الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد تمام تعریفیں پروردگار فاطمہ زہرا کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا فجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرها مع ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شکر پروردگار شہزادی کے کونے کہ ایک بار پھر شرف حیات ملا برائے ذکر شہزادی کونے خدا کا احسان ہے لطف و کرم ہے کہ اس نے شہزادی کونے سے محبت کرنے والوں میں مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے اور خدا کا یہ بھی احسان ہے کہ صرف محبت کرنے والوں میں شامل نہیں کیا بلکہ شہزادی کونے ان کے تمام دشمنوں سے براءت کرنے والوں میں بھی شامل کر دیا ہے. یقیناً ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہر سال آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے اور اس سال بھی شہزادی کونین کے توسل سے آپ کی خدمت میں عنوان ہے عبادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے گرچہ مجھ جیسا کم علم انتہائی ناقص علم رکھنے والا کیا جملے ادا کر سکے گا، لیکن ایک یقین کے ساتھ آپ بھی یہاں پر آئے ہیں اور میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں कि हक तो अदा नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं कि शहज़ादी कौनैन के फ़ज़ाइल और सीरत के बयान का हक अदा हम नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम शहज़ादी कौनैन के ज़िक्र में शामिल होने वालों में नाम तो लिख दिया जाएगा और एक बहाना शायद बन जाए मेरे और आपके इबादत में निखार पैदा होने का कि हम जिसके लिए जमा हुए हैं, जिसके नाम से मोहब्बत करते हैं, उसका हाल इबादत खुदा में किस अंदाज से हुआ करता था। और चूँकि सरनामे कलाम की एक आयत जिसको आपने समाअत फरमा लिया और इंशाअल्लाह ये रोज़ आपकी खिदमत में तलावत होगी, सूरह मुबारक अल इनाम की आयत नंबर 162 है, साहिबान इल्म औदा मुशीफ फरमाएं उससे बेहतर जानते हैं। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ ऐसी दुआएं हैं जो नमाज शुरू करने से पहले पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं में उन मुस्तहबात में एक ये दुआ भी शामिल है जो है आयत कुरान, मगर एक दुआ के तौर पर भी नमाज के शुरू में तकबीरतुल अहराम से पहले पढ़ी जाती है ताकि तवज्जो रब की तरफ इंसान की हो सके और अल्लाहु अकबर कहने से पहले वो अपनी तवज्जोहात को अल्लाह की जानिब मबजूल कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि इस आयत का तर्जुमा और ये आयत शामिल है उस वक़्त भी दुआओं के एतबार से जबकि एक कुर्बानी पेश की जा रही हो और किसी भी हैवान हलाल गोश्त को जब तक क़िबला रुख लिटा कर शरई तरीक़े से ज़िबा ना किया जाए तब तक वो हलाल नहीं होता, और हलाल होने के साथ साथ एक दुआ की तालीम मासूमीन ने मुझे और आपको अता फरमाई कि ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के नाम के इस एतबार से ये आयत तलावत की जाए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये कुल हबीब कह दीजिए, पूरे कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर लफ्ज़ कुल इस्तेमाल हुआ और लफ्ज़ कुल का इस्तेमाल पैगंबर की अमानत पर सबसे बड़ी दलील है। पैगंबर कितने अमीन थे कि जैसे लफ्ज़ खुदा ने पैगंबर को अता किए, पैगंबर ने बग़ैर किसी कमो कास्त के हमारे और आपके लिए शक्ल क़ुरान में अता कर दिए कुल। हालांकि ये लफ्ज़ पैगंबर के लिए था, हबीब आप कहिए कुल, तो पैगंबर इसके बाद जो था वो कहते, मगर आपने आयत तिलावत की उम्मत के सामने तो कुल इन्ना सलाती कहिए कि बेशक के मेरी नमाज, व नुसुकी, नुसुक किसे कहते हैं, नुसुक नासिक मनासिक, ये तीन लफ्ज़ हमारे दरमियान ज़्यादा राइज हैं नून सीन और काफ के मादे से। इसका एक तर्जुमा तो इबादत के माना में लिया गया और इबादत में ख़ास इबादत हज के आमाल की बजा आवरी को मनासिक के नाम से याद किया जाता है। इसके एक माना कुर्बानी के भी हैं और ये आप उसे बेहतर जानते हैं कि हज में भी ये कुर्बानी होती है और शायद जो मेरे और आपके महलों में कुर्बानी होती है अपने वतन में, ये कुर्बानी ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। वाजिब कुर्बानी तो वही है जो हज के मनासिक में शामिल है और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी इबादत जिसमें कुर्बानी मौजूद ना हो, बल्कि अल्फाज मासूम के सला तो कुर्बानो कुल तकिन, नमाज हर मुत्तकी इंसान के लिए कुर्बत परवरदिगार का जरिया है। तो लफ्ज़ कुर्बान को कुर्बत के माना में समझते हुए उर्दू के मसाइल को आसान कर लीजिए, कुर्बत वही है जो कुर्बानी है और कुर्बानी वही जो कुर्बत है। अगर हैवान का ज़िबाह करना खुदा से दूर कर दे तो कुर्बानी नहीं है, तमाशा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये गोश्त खाने के बहाने बना लिए गए हैं, ये कुर्बानी नहीं है जब तक तो खुदा से करीब ना करे। تو خدا سے قریب کرنے کے معنی میں ایک نسک کا ترجمہ قربانی کے اعتبار سے کیا گیا، یا خاص قربانی ہے نہر کرنا، وہ اونٹ کے مسائل میں ہے، لیکن ایک معنی عبادت، ایک معنی خاص عبادت حج کے اعمال، اور تیسرا معنی ہے اس کے قربانی پیش کرنا۔ قل ان صلاتی، اب غور کیجئے گا کہ نماز سے پہلے کیوں پڑھی جاتی ہے اور قربان کرتے وقت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اگر یہ نسک عبادت کے معنی میں ہے تو نماز بھی تو عبادت ہے، الگ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ خاص اور عام، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عام پہلے ہوتا ہے اور خاص بعد میں ہوتا ہے، بھائی سب کے لیے اعلان ہے کہ مسجد میں آئی ہے، مگر مومنین کے لیے اعلان ہے کہ مسجد میں آئی ہے، اس کا مطلب کیا کہ ایک عام اعلان ہے ایک خاص اعلان۔ صلوات پڑھے محمد والے یا یہاں عام اور خاص کے اعتبار سے استعمال نہیں ہے، یہاں استعمال اس اعتبار سے نہیں ہے، پھر استعمال کس اعتبار سے؟ استعمال اس اعتبار سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت قیامت کا میدان ہوگا، فرماتے سب سے پہلے بندگان خدا سے جس بارے میں سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے جس کا محاسبہ بندوں سے کیا جائے گا، یہ قیامت کا مسئلہ یاد رکھیے۔ قبر میں نماز کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی پیچھے رہ جانے والے نماز قضا پڑھوا سکتے ہیں، ابھی اس بات کا امکان ہے کہ انسان کی قضا نمازیں اس تک پہنچا دی جائیں، تو خدا نے نماز کا سوال نہیں رکھا قبر کے اندر، نماز کا سوال رکھا ہے۔ اب روایت اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ قیامت میں ہوگا، قبر میں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے سوالات الگ ہیں اور قبر کے سوالات الگ ہیں، قبر کے مسائل الگ ہیں، قیامت کی باتیں الگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان قیامت میں جو بندگان خدا سے حساب لیا جائے گا، الصلاۃ، وہ نماز کا ہوگا۔ ان قبلت، یہ حدیث وہاں کے بارے میں، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو نماز کے علاوہ جتنے نیک کام کیے تھے سب قبول ہو گئے۔ وہ ان ردت، اور اگر نماز رد کر دی گئی، رد ما سواہا، تو جتنے اعمال نماز کے سوا کیے سب رد ہو گئے، اس لیے نماز کو رکھا پہلے۔ قل ان صلاتی، قل ان صلاتی، حبیب کا یہ بے شک کہ میری نماز، نماز پہلے کہ نماز قبول ہو گئی، وہ نسخی باقی تارے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، وہ محیایا، میری پوری زندگی، اس کا مطلب عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت خاص ہے ایک عبادت عام ہے۔ خاص عبادت تو مخصوص طریقے سے اللہ کو یاد کرنا، جیسے تلاوت قرآن کر لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ نکال دینا، جہاد کر لینا، یہ عبادت خاص عبادت ہے، شکل معین کے ساتھ ہے۔ ایک عام عبادت ہے، اس کی شکل معین نہیں ہے، محیایا و مماتی، میری پوری حیات اور میری پوری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو گویا خالی نماز ہی خدا کے لیے نہ ہو، بلکہ نماز سے پہلے جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی خدا کے لیے ہو، اور نماز کے بعد جو کچھ کرنا چاہیں وہ بھی خدا کے لیے ہو، ماہ شعبان بھی خدا کے لیے ہو، اور عید کا مہینہ بھی خدا کے لیے ہو، حج سے پہلے بھی خدا یاد ہو، حج کے بعد بھی خدا یاد ہو، کوئی حیات کا لمحہ ایسا نہ ہو کہ حیات کا لمحہ تو ہو مگر عبادت پروردگار، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ جملے ہیں کس کے؟ یہ جملے میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ جملے میرے اور آپ کے نہیں ہیں، میں اور آپ تو نقل کر رہے ہیں۔ یہ جملے اصلاً کس کے ہیں؟ یہ جس کے جملے ہیں، وہی تو ہے وجود ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد۔ یہ خدا اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ انا صلاتی، کہ میری نماز پیغمبر کی نماز، پیغمبر کی عبادت، پیغمبر کی حیات، پیغمبر کی موت، پیغمبر کی حیات، پیغمبر کی موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب پیغمبر جس کو اپنی حیات میں قریب بلائیں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، اور جس کو اپنے موت کے وقت اپنا جانشین بنائیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ میری حیات بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، پیغمبر کے الفاظ ہیں. اور جب پیغمبر اس منزل پر یہ جملے ادا کر رہے ہوں تو غور کیجئے، کون ہے سیدہ؟ سلام اللہ علیہا. قسم بخدا، الفاظ کہاں سے لائیے عبادت ختمی مرتبت کو سمجھانے کے لیے؟ میں کون سے مقام پہ آپ کو لے کے چلوں؟ آپ کو لے کے چلوں مکہ المکرمہ میں. آج میرا اور آپ کا نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، بڑے اطمینان سے مسجد میں آتے ہیں، روشنی کا انتظام ہے، موسم گرم ہو تو پنکھا چلا لیتے ہیں، انتظام ہوا کا موجود ہے، پھر بھی نماز پڑھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ شارٹ اور راستہ نکل آئے، جبکہ اتنی آسانیاں ہیں، بچھا ہوا کارپیٹ ہے، روشنی کا انتظام ہے، ہوا کا اہتمام ہے، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، کوئی نماز کے دوران تالیاں پیٹنے والا نہیں ہے، کوئی نماز کے دوران نقلیں بنانے والا نہیں ہے. پیغمبر کی نماز کو یاد کیجئے، مکہ المکرمہ ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ کا صحن ہے. کیا کر رہے تھے پیغمبر؟ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران تالیاں بجا کر پیغمبر کو ڈسٹرب کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اپنی عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کے لیے مسجد حرام کو چھوڑ کر آ گئے اس مقام پر جسے جبل قرآن کہتے ہیں. ایک نام جبل قرآن، ایک نام جبل نور، ایک نام غار حرا، بہت عظیم پہاڑ. حضرت عبد المطلب علیہ السلام جہاں خدا کی بندگی کیا کرتے تھے اسی مقام پر جا کر بیٹھ گئے. اور اب خاص مقام ایسا تھا کہ جہاں اللہ کے رسول جا کر بیٹھے تو دو عنوانات تھے، ایک کعبے کی زیارت ہوتی رہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کعبہ جس کی زیارت کرے اسے محمد کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا. فرزدق بتا گیا تھا کہ سید سجاد کون ہیں. کیا سید سجاد کا سمجھنا، کیا مولا متقیان کا سمجھنا، کیا مولا حسین کا سمجھنا، کیا ان تمام کے جد ختمی مرتبت کا سمجھنا، یا کعبے کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں پر بیٹھ کر کعبے کی سیدھ ہوتی تھی، اور خالی کعبے کی نہیں بلکہ بیت اللہ المقدس کی سندھ بھی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں قبلہ کعبہ نہیں ہے، زیارت گاہ ضرور ہے، طواف اسی کا ہوتا ہے، حج یہیں پر ہوتا ہے، عمرہ یہیں پر ہوتا ہے، مگر نماز سمت بیت المقدس ہوتی ہے. تو کبھی غور کیجئے، عبادتوں میں قیاس مت کیا کیجئے، اس لیے کہ یہ خانہ خدا ہے، طواف یہاں ہے، نماز وہاں. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ کے رسول کی عبادت میں غور کیجئے، جب اللہ کے رسول کی عبادت کا سمجھنا ذرا سا آسان ہوتا جائے تب سمجھیے کہ اگر کوئی عام باپ کہتا، اگر کوئی عام شخص کہتا کہ میری بیٹی، میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میری جان کی طرح سے مجھے عزیز ہے، میری بیٹی میرے لیے محبوبہ نفس ہے، تو کہہ سکتا ہے باپ ہے نا بیٹی سے محبت کر رہا ہے. لیکن اگر باپ بیٹی سے محبت کرے تو یہ محدودیت ہے، جہاں جہاں تک دائرہ بیت ہے، جہاں جہاں تک دائرہ حیات انسان ہے، وہاں تک جہاں تک انسان کا علم ہے وہاں تک بیٹی سے محبت ہے. کل بیٹی نے نماز قضا کر لی، آپ تو کہہ رہے تھے میری جان ہے. کل بیٹی نے روزہ چھوڑ دیا، آپ تو کہہ رہے تھے میری جان ہے. کل بیٹی نے حج سے انکار کر دیا، آپ تو کہہ رہے تھے بیٹی میری جان ہے. تو آپ کے الفاظ کی حقیقت کیا ہوئی؟ आप नहीं जानते थे कि कल बेटी क्या करने वाली है। नेक और सालियर रहे तो आप खुश रहेंगे, अगर कोई अमाले सालिये ना कर सके आप परेशान हो जाएंगे। बेटी हो तो ऐसी जिसे पैगंबर अपना टुकड़ा कहें, जो मोहम्मद का टुकड़ा हो जाए उसे फातिमा कहते। जो पैगंबर का टुकड़ा हो जाए, पैगंबर की इबादत को पहचानते चलिए। आज तमहीद की मंजिल है आपकी खिदमत में, तो चंद बातें मुकम्मल करना चाहूँगा कि इबादत क्या है। वैसे तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं इबादत क्या है। इबादत और इताअत, ये दोनों कैफियत ऐसी हैं, कभी मिल जाती हैं कभी जुदा हो जाती हैं। कभी इताअत में इबादत होती है, कभी इबादत के बगैर भी इताअत होती है। क्या मतलब? बड़ी आसान सी बात है, रात भर सजदे करना इबादत भी है और इताअत खुदा और रसूल भी है। और अगर रात को सोने का हुक्म आ जाए तो अब सजदे नहीं है मगर इताअत तो है। तो ये बता गए मेरे मौला कि ये मत देखना कि तुम इबादत कर रहे हो, समझना इताअत कर रहे हो। अब इताअत चलने में हो तो वो भी इबादत है, इताअत सोने में हो तो वो भी इबादत है, इताअत पैगंबर का साथ छोड़ने में हो, वो चले गए आप सो रहे हैं, तो साथ जाने वालों का क्या बना? अल्लाहु अकबर। पैगंबर के साथ चलना कमाल नहीं है, पैगंबर का हुक्म मानना कमाल है। अब ना कहना कि साथ वाले थे या साथ वाली, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। असलन इताअत क्या है और इबादत की कैफियत को क्या कोई बयान कर सकता है हमारे और आपके दरमियान? तो इबादत समझाने के लिए इससे आसान अल्फाज क्या होंगे जो मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया मौला ने? फरमाया यही जुमला है जो चौथे इमाम की ज़ुबान से भी तमाम तारीख तक पहुंचा, वही अल्फाज हैं। ये दोनों मासूमीन के अल्फाज बताते हैं कि इबादत की तीन किस्में हैं। या कौम जो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करती है वो तीन तरह के हो सकते हैं इबादत गुजार। या तो ऐसे होंगे जो जन्नत की बातें सुनकर, जन्नत की बातें सुनकर अल्लाह की बंदगी इख्तियार करेंगे। जब तक जन्नत की बात सुनते रहेंगे वो सूरह रहमान पढ़ते रहेंगे, जब तक जन्नत की बातें सुनते रहेंगे। इसलिए बहुत से अफराद को सूरह हूद अच्छी नहीं लगती, जहाँ अजाब का वक्त, अजाब के तस्करे हैं, जहाँ क़यामत में खौफ की बातें हैं। बहुत से देखे मैंने साहिबान ईमान के मजमे कि वहाँ खुशखबरी सुनाइए। मुझे उस्ताद शहीद सिद्क जाफर का जुमला फिर दोहरा दूँ, दिलवाद पढ़े मोहम्मद वाले। इस बहाने से उस्ताद को भी याद कर लिया, क्या अंदाज था कि मिजा भी फरमाते थे तो ऐसा कि लुत्फ दो बाला हो जाए। कहते थे कि क्या मसला समझ में नहीं आता कि जब जाते हैं साहिबान इल्म और खतीब हजरत पोश इलाकों में, तो नाम लिया करते थे, मैं नाम नहीं लेता, पोश इलाकों में जाते तो वहाँ जाकर तो वो पढ़ते हैं जहन्नम की बातें, और जब आते हैं ऐसे पसमानदा इलाकों में कि जहाँ गुरबत हो, गली में अंधेरा हो, लाइनें गटरी खुली हुई हों, वहाँ पढ़ते हैं जन्नत की बातें। मैं हैरान था कि मसला क्या है, एक ही खतीब है वहाँ बयान करता है जहन्नम की बातें, यहाँ बयान करता है जन्नत की बातें। तो खतीब ने जब उससे पूछा गया तुम करते क्या हो, तो खतीब कहता है मसला ये है कि मैं पोश इलाकों में जन्नत क्या बयान करूँ। वो तो कहेंगे जो जन्नत तुम दिखाते हो ये हमारे पास मौजूद है, और बाला पसमानदा इलाकों में जहन्नुम क्या बयान करूँ। जिस जहन्नुम की तुम बात करते हो ये इलाका पहले ही जहन्नुम बनवा मुसलमान पड़े मोहम्मद वाले। बहुत मशहूर रिवायत, ये बात मैं फिर दोहरा दूं कि नई रिवायत नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए रिवायत नई का मतलब बिदअत हो गया। रिवायत तो वही जो मासूम के ज़माने हयात ज़ाहिर में हम तक पहुंची। और अब अल्फाज क्या है, कौम, पहली कौम जो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करती है जन्नत के लालच में, कितने लोग हैं भाई। उठिए सुबह की नमाज के लिए, क्या मिलेगा? पढ़िए जोहरेन की नमाज, क्या मिलेगा? नमाज के बाद भी सोचते हैं क्या मिलेगा। अब ऐसे जैसे लोग मस्जिद से हुसैन के बाद पूछते तबरुक में क्या मिलेगा, भाई डरते हुए कह रहा हूं, तबरुक की अजमत अपने मकाम पर, सर आंखों पर शिफा भी है और गिजा भी है, इसमें कोई शक नहीं। और जो इसकी तोहीन करे उसका अंजाम वहीं पर है जहां अहले बैत की तोहीन करने वालों का अंजाम, क्योंकि निस्बत है तबर्रुक की नाम हुसैन से। लेकिन नाम हुसैन से निस्बत हो, मतमई निगाह मोमिन न हो, मतमई निगाह मोमिन माले मजलिस हो, तबर्रुक मजलिस न हो। इसलिए तबर्रुक तो यहां मिल जाए और ना मिले तो वहां तो मिलने वाला है, तो मिलने वाला। लीजिए लीजिए, बहुत गौर कीजिए। मैं जुमला जायरीन के सफर ज़ियारत में इस्तेमाल कर चुका, आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे कारवान मुझे मिलते हैं जो कहते हैं मौलाना बताएं सफर की, सफर ज़ियारत की फजीलत क्या है, कितना सवाब मिलने वाला है, मौला हुसैन के रोज़े पर जाने का सवाब कितना है। मैंने कहा सब बयान कर दूंगा, लेकिन याद रखो सवाब के लालच में जाओगे तो जायर नहीं बनोगे, ताजिर बनोगे, ताजिर बनोगे। सवाब के लालच में जाओगे ताजिर बनोगे, हुसैन की मोहब्बत में जाओगे आशिक बनोगे। कभी आपने सुना कोई अपनी माँ को प्यार करता हो हदीस पढ़कर कि क्या मिलने वाला है? कभी इताअत गुजार बेटा अपने बाप की इताअत करता है तो क्या हदीस पढ़ के करता है कि क्या मिलने वाला है? मोहब्बत है माँ से, मोहब्बत है बेटे से, मोहब्बत है बेटी से। रिवायत पढ़े बगैर, सवाब सुने बगैर आप अपने अहलो आयाल से मोहब्बत कर रहे हैं तो आका हुसैन से ऐसी मोहब्बत कब होगी? जो रिवायत और फजाइल अहदीस सुने बगैर हुसैन से मोहब्बत हो जाए। मुझे सवाब नहीं चाहिए, हुसैन चाहिए। जरा सी मुश्किल बात थी ये, जरा सी मुश्किल बात थी, ये पढ़ना लाजिम थी। इसलिए इसलिए कि हमारे और आपके मायार बदलने चाहिए। कब तक ऐसा होगा, कब तक ऐसा होगा कि हम फजाइल की रिवायत सुनकर फिर आले मोहम्मद को पहचानेंगे? भाई जहां जहां हमारे मौला, जहां हमारे मौला में वहां जाना है, चाहे सवाब लिखा हुआ हो लिखा हुआ ना हो, बस जहां मौला वहां मौलाई, जहां मौला वहां मौलाई। इमाम फरमाते एक कौम ऐसी है कि जो इबादत तो करती है मगर जन्नत के लालच में करती है। इसका मतलब जन्नत की बुराई नहीं की मौला ने। अब बहुत से नाजुक मसले हैं और अब हमारे दरमियान ऐसे ऐसे अल्फाज पेश करने वाले लोग आ चुके जो जन्नत की बुराई भी कर रहे होते हैं। अजीब लोग हैं जो कहते हैं कि जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अशआर की जुबान में ये भी कहते हैं कि तुमको इरम पसंद हमें करबला पसंद, इरम और है करबला और है, दीवाने हुए हो तुम, इरम और समझते हो करबला और। करबला को समझा ही कब? अगर करबला समझ में आ गई होती तो कभी इरम को करबला से जुदा ख्याल ना करते। क्या भला जिस्म और रूह कभी जुदा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद? तो अजीब व गरीब से मसाइल हैं। एक कौम ऐसी है जो अल्लाह की इबादत करती है जन्नत के लालच में करती है। इमाम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, मेरे अल्फाज नहीं है और आप उससे बेहतर जानते हैं कि ये मौला के फरमान है। और इतना मशहूर है कि इससे इनकार इतना आसान नहीं है। हाँ, मुनकर हो जाइए तो अलग बात है, इनकार आसान नहीं। लेकिन मौला फरमाते हैं एक कौम ऐसी है जो अल्लाह की इबादत भी लालच में करती है। लोग हमसे कहते हैं कि तुम तो पैसे लेकर मातम करते हो। आइए, मातम पैसों की बुनियाद पर नहीं होता, मातम तो इश्क की बुनियाद पर होता है। वरना हम तुम्हें पैसे देते हैं, आओ मातम करके दिखाओ। वरना कितने कितने ऐसे इज्तमा देखे, इज्तमा तो है मगर रौनक नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहब्बत। हाँ, मुझे बताइए, जिस जिसको मार्फत जितनी आले मोहम्मद की अता हो रही है उसी लिहाज से उसकी निगाह में जन्नत नहीं है, उसकी निगाह में आले मोहम्मद का कुर्ब है। भाई जहां आले मोहम्मद वही जन्नत है। अल्लाह अकबर। वो जुमला मौला का फरमाते हैं एक कौम के जो इबादत तो करती है अल्लाह की मगर करती जन्नत के लालच में, जब तक लालच मिलता रहे तब तक करती रहेगी। एक कौम और है जो दोजख के खौफ से बहुत डरते हुए, मैं किस मंजिल पे लेकर आ गया इन अल्फाज के साथ, कहां तक पहुंच गए। एक ऐसे आपको मिलेंगे, अब ये सूफी अजम क्या है, ये मुख्तलिफ जो नक्शबंदी और तमाम ये मकातिब तैयार किए गए ये आले मोहम्मद के फजाइल से अवाम को दूर करने के लिए, कि ये बस अल्लाह को मानना है तो अल्लाह अल्लाह करो, हर इतवार को जिक्र खुदा की महफिल होती है, तुम्हें इतवार ही मिलता है अल्लाह के लिए, आओ हुसैन की मजलिस में आओ, रोज अल्लाह का नाम होता है, इसमें इतवार की कैद नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, एक कौम ऐसी इमाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह की बंदगी तो करती है मगर खौफ जहन्नम से करती है। जब तक डराते रहोगे तब तक ये सजदे करते रहेंगे, तुम्हें क्या खबर कि सजदे में सर झुका है तो हूरान जन्नत का ख्याल जहन में है, ताजिर है, या सजदे में सर झुका है तो जहन्नम के सांपों का खौफ दिल के अंदर है। ला हौला वला कुव्वत, इमाम फरमाते न ये इबादत न ये इबादत, ये ताजिरों की इबादत, वो गुलामों की इबादत। हम तो समझते थे कि गुलामी ही इबादत है या इबादत ही गुलामी है, मगर इमाम के अल्फाज ने तो ये तस्वीर बदल दिया, गुलामी और है इबादत और है। इबादत तो गुलामी से आजादी दिलाने का नाम है, इबादत आजाद इंसान को गुलाम बनाने का नाम नहीं है। लेकिन जरा रुके रहिए, इसलिए कि हर लफ्ज के माना मुख्तलिफ हो सकते हैं, कुछ बड़े आजाद हो सकते हैं। रिवायत है ना इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम, खाली उस रवायत का एक जुमला, आप तमाम साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, एक जुमला उस रवायत का कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस शख्स के बारे में इसके घर से गाने की आवाजें आ रही थी, इसका नाम बुशर है। फरमाया उस खातून कनीज से जो कचरा डालने बाहर आई है, पूछा किसका घर है, आजाद है या गुलाम, आजाद है या गुलाम, ये माना अलग है, आजाद है या गुलाम, ये माना अलग है। और जो मौला मुत्तकियान के अल्फाज वो अलग हैं कि गुलामों की इबादत और है, ताजिरों की इबादत और है। वहां पर मेरा मौला फरमाता है खातून से, किसका घर है ये, गुलाम है या आजाद। खातून क्योंकि खुद कनीज है तो उसे बुरा लग गया, कहती मेरे मालिक को मेरे आका को आप गुलाम समझते हैं, वो गुलाम नहीं आजाद है। इमाम ने फरमाया वाकया आजाद है, अगर किसी का गुलाम होता तो अपने आका की मर्जी का ख्याल तो करता। ये अलग माना है, ये अलग माना है, वो अलग माना है। इमाम चाहते हैं इंसान ऐसी इबादत करे कि ना रगबत जन्नत रहे ना रहबत जहन्नम रहे। ना रहबते जन्नत रहे ना रहबते जहन्नुम रहे, फिर क्या रह जाए। इमाम फरमाते एक कौम ऐसी है जो अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह की इबादत करती है सिर्फ अल्लाह को लायक इबादत समझते हुए। ये चौथे इमाम के अल्फाज में ये अंदाज था, मौलाए मुत्तकियान के अल्फाज अपनी जात से मखसूस थे। फरमाया मैं परवरदिगार से बात करते हुए मैं ना तो तेरी जन्नत के लालच में तुझे सजदा कर रहा हूँ, ना तेरे जहन्नम के खौफ से तुझे सजदा कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तुझे लायक इबादत पाया तो सजदा कर रहा हूँ। अब जब मौलाए मुत्तकियान की इबादत समझ में आ जाए तब समझिए नेमल ऑन अला ताअतिल्लाह किसके जुमले थे और किसके बारे में बात पढ़े मोहम्मद वाले। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल उन्होंने मुंतखब कर लिया है। और चूंकि मैं चाहता हूँ कि दुआए हरीक भी आपके दरमियान इंशाल्लाह उसके पाठ तिलावत करूँगा। वैसे तो मौका बहुत कम मिल पाता है आम मोमिनीन के हवाले से कि शहजादी कौनैन की कौन कौन सी दुआएँ, आम तौर पर वो दुआएँ जो मौलाए मुत्तकियान की हैं, चौथे इमाम की हैं, छठे इमाम की मौला हुसैन की हैं, वो तो हमारे यहाँ मारूफ हो जाती हैं। शहजादी कौनैन की दुआएँ बहुत कम मारूफ होती हैं। इस दुआ की तलावत होगी और इसके पार्ट्स मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह पाँच रातों में। किस तरीके से शहजादी कौनैन ने खुदा की मार्फत इबादत उतनी मुकम्मल होगी जितनी मार्फत इबादत करने वाले को खुदा की होगी। वरना तो बहुत से लोग जमात में खड़े होते हैं, खड़े सब साथ होते हैं, मगर कोई पहले आसमान तक पहुंचता है, कोई दूसरे आसमान तक पहुंचता है, और कोई घर के बिलों तक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस महीने तो बिजली के बिल बहुत आ गया, अब तो समझिए कि शैतान रुकावट डालता कहाँ पर है। कभी टीवी देखते हुए ख्याल बिजली के बिल का नहीं आता, ये नमाज पढ़ते हुए ही ख्याल क्यों आता है बिजली के बिलों का। इसलिए शैतान पे बिजलियाँ गिरती हैं जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता, बाकी सब पढ़ें शैतान को कोई मसला नहीं है, जब मोमिन पढ़े तो शैतान को सबसे बड़ा मसला यही है कि मोमिन भी और नमाजी भी हो जाएगा। शैतान के लिए कयामत कुबरा है किसी मोमिन का नमाज पढ़ना, कि मोमिन भी है, अली को मौला भी मानता है और नमाज भी पढ़ रहा है, तो ये तो मुझसे जीत जाएगा, इसे तो हराना है। जैसे जैसे इबादत मार्फत की बुनियाद पर, अब पहचानिए शहजादी कौनैन की मार्फत इस दुआ के एतबार से जिसको हम शुरू कर रहे हैं। हमारी एक मजबूरी है कि हम दुआ से पहले दुआ पढ़ने के फायदे बयान करेंगे। हालांकि अभी इसकी नफी कर चुके कि इस बुनियाद पर दुआ मत पढ़िए कि इससे क्या मिलने वाला है। इस बुनियाद पे पढ़िए कि जनाबे सैयदा ये दुआ तिलावत करती थी, शहजादी इस दुआ की तिलावत खुद करती थी, और शहजादी का मतलब रसूल खुदा करते थे, शहजादी का मतलब मौलाए मुत्तकियान करते थे, शहजादी का मतलब आपके औलाद में तमाम आइम्मा ने इस दुआ की तिलावत की। इसलिए कि अगर हजरत अबू जर की दुआ आसमान के फरिश्ते पढ़ते हो तो फातिमा जहरा की दुआ कौन कौन पढ़ता होगा। और यह दुआ इसका नाम कि सुबह की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, अल मुसम्मा बिदुआइल हरीक, नाम बड़ा अजीब सा है हरीक। कहते हैं और रिवायत है इमाम जाफर सादिक किताबों के बहुत सारे हवाले, मुस्नद एक किताब मुरतब की गई शहजादी कौनैन से जो रिवायात सनत के साथ बयान हुई मुस्नद फातिमा के नाम से, बिहार के अंदर मिसबा अल कफ़अमी में इसको बयान किया गया, उसके अलावा दीगर मिसबाहुल मुतहज्जिद में भी इस दुआ को बयान किया गया। यह दुआ है रिवायत के साथ। इमाम फरमाते हैं मुझसे मेरे बाबा ने इरशाद फरमाया, छठे इमाम के बाबा पांचवें इमाम, पांचवें इमाम मेरे बाबा फरमाते हैं कि मैं अपने बाबा से इस बात को बयान करता हूँ। पांचवें इमाम अपने बाबा से बयान करते हैं कि मेरे बाबा कुबा के इलाके में, मदीने मुनव्वरा कुबा के इलाके में मौजूद थे। खुदा हम सबको नसीब करे मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत। भाई मैंने टाइम देखा नहीं है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सामने घड़ी नहीं है। वो खतीब मरहूम हो गए जो कहते थे घड़ी मत देखो, घड़ी भी शिया है, सामने घड़ी ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बात हो रही है। इमाम फरमाते हैं मुझसे मेरे बाबा ने, आप फरमाते हैं मेरे बाबा मौजूद थे कुबा के अंदर और कुबा के इलाके में। ये बात याद दिला दूं कि महल्ले बनी हाशिम मदीने मुनव्वरा मासूमीन के घर वहाँ पर, उसके बाद वाक़े हर्रा के मौके पर चौथे इमाम के घर आप मुंतकिल हो गए। बागे सलमान फ़ारसी के महल्ले वक़ू से करीब एक घर, इसे बैतु शरफ के नाम से बाद में याद किया गया। गालिबन जो समझ में बात आ रही है कि ये वाकया उस वाले घर से मंसूब है। आपका घर वहाँ पर है, आप कुबा के अंदर हैं। चूँकि ये जितनी भी ज्यारतें ममनुआ हैं ये तमाम के तमाम कुबा के करीब करीब हैं। आप वहाँ बैठे हुए थे कि एक मरतबा एक शख्स दौड़ता हुआ खिदमत इमाम में आया। रिवायत के अल्फाज बास उलमा ने इस तरह बयान किए कि मौला सजदे में थे, सजदे शुक्र में आकर आवाज़ दी, उठिए मौला आपके घर में आग लग गई, आपके घर में आग लग गई। इमाम ने सजदे शुक्र खुदा को मुकम्मल करने के बाद सर उठा के फरमाया आग नहीं लगी। कहता है मैं तहकीक के साथ कहता हूं कि आग लगी है, फरमाया आग नहीं लगी है। फिर चला गया, फिर देख कर आया, फिर कहता है मौला आग लग गई है, शोले उठ रहे हैं, फरमाया नहीं आग नहीं लगी। तीसरी बार फरमाते हैं पांचवें इमाम की मेरे बाबा के पास तमाम महले इलाका जमा होकर आ गए। दो बार तो एक शख्स अकेला आया और तीसरी बार अहले इलाका जमा होकर आ गए और सबने आकर फरियाद करना शुरू की, खबर लीजिए आपका घर जल रहा है। इमाम ने इरशाद फरमाया मेरा घर नहीं जल रहा। जब तीन मरतबा ये खबर आप तक पहुंचाई गई, इमाम फरमाते हैं जब आग को बुझाया गया, आग को खामोश किया गया तो पूरे अतराफ में जो मकानात थे वो तो जले थे मगर बैतु शरफ महफूज था। मसला क्या है, घर के चारों तरफ अतराफ में आग लगी थी और फील ये होता था कि अब घर कैसे बचेगा। ये घर आज के ज़माने के नहीं थे कि सरिया और सीमेंट लगा हुआ हो, जलने का इम्कान बहुत मादूम, खिड़की दरवाजे जल सकते। उस ज़माने का घर जैसे बनाए जाते थे, चारों तरफ आग मगर इमाम का घर महफूज है। तब इरशाद फरमाते हैं चौथे इमाम अपने फर्जंद पांचवें इमाम से कि बेटा ये वो राज है जिसको अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया। बाबा आपको इतना यकीन कैसे था कि घर नहीं जला है, पूरे अहले महल्ला आकर गवाही दे रहे थे घर जल गया और आप इनकार कर रहे थे। फरमाइए वो राज है जो जिब्राइल अमीन ने पहुंचाया, अल्लाह के रसूल तक आया कि वही इल्म है जिसकी बुनियाद पर शहजादी कौनैन हमारी जद्दे माजदा फातिमा ज़रा सलामुल्लाह अलैहा इस दुआ को सुबह की नमाज के बाद तिलावत किया करती थी। इस दुआ की तिलावत के सात फायदे हैं। अगर कोई इंसान सुबह की नमाज के बाद यह दुआ तिलावत कर ले तो खुदा 1000 फरिश्तों को मुअय्यन फरमाता है, मौक्कल फरमा देता है कि वो उसके घर को, उसकी जान को, उसके अहल को, उसके घर वालों को, हत्ता कि उसकी जाहो हशम को भी महफूज करते चले जाते हैं। इज्जत महफूज, पैसा महफूज, जान महफूज, औलाद महफूज, घर वाले महफूज, घर महफूज। अब और कितना महफूज चाहिए? सलवात पढ़े मोहम्मद फिर इमाम फरमाते हैं किस किस से महफूज। आज दो बातें और बाकी बातें इसकी जो सात बातों में बाकी बचेंगी इंशाल्लाह आगे बयान होंगी। दो बातें, पहली मिनल गर्क वल हर्क, एक डूबने से और एक जलने से। दुआए हरीक का तर्जुमा है वो दुआ जिससे जलने से बचा जा सकता है। जैसे दुआए गरीक है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दुआओं में से, यह दुआए हरीक है और इहराक कहते हैं जलाए जाने को। यह दुआ जो तिलावत करे उसको खुदा जलने से महफूज रखता है। लेकिन यह दुआ इसलिए मत पढ़िए कि जलने से बचेंगे। हम तो कहते हैं कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में कितने घर जलाए गए, करबला में हत्ता खैमे जलाए गए। एक इम्तिहान अपने मकाम पर, लेकिन एक हिफाजत का तरीका मासूमीन ने बताया। इस दुआ में अल्फाज क्या हैं गौर कीजिए, और मैं इस दुआ को इख्तसार के साथ बयान करूंगा। अरबी के अल्फाज छोड़ते हुए उर्दू के अल्फाज पे इक्तफा करेंगे हम आज की हद तक। फरमाती हैं शहजादी, और मैं जो तर्जुमा पेश कर रहा हूँ ये अल्लामा सैयद ज़ीशान हज़रत जवादी आलल्लाह मकाम होगा, और ख़ास तौर से मैं उनके ईसाले सवाब की नियत शामिल कर रहा हूँ। बाकी और किताबें हैं जो तर्जुमा मौजूद इसका, मगर सबको छोड़ के पढ़ रहा हूँ। आपने लिखा तर्जुमे में, खुदाया मैंने इस हाल में सुबह की है। अब शहजादी के अल्फाज का तर्जुमा बतौर मोनस होगा, और जब आप पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मोमनी तो बतौर मुजक्कर होगा, और मोमिनात पढ़ेंगे तो बतौर मोनस होगा। खुदाया मैंने इस हाल में सुबह की है कि मैं तुझे गवाह बनाकर कहती हूँ, या गवाह बनाकर कह रहा हूँ, और तू गवाही के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं तेरे मलाइका हामिलान अर्श साकिनान अर्जो समा अंबिया और मुरसलीन बंदगान सालिहीन और तमाम मखलूकात को भी गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि तू मेरा माबूद है। सब सुन लें, हामिलान अर्श सुने, ज़मीन व आसमान के फरिश्ते सुने, अंबिया सुने, रसूल सुने, तमाम सालहीन बंदगान सुने, और तमाम तर मखलूकात परवरदिगार सुने कि मेरा माबूद सिर्फ वो परवरदिगार और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है। तेरे अलावा पाइने अर्श से लेकर सातों ज़मीनों तक जितने माबूद बनाए जाएं सब बातिल हैं। मार्फत, शायद मैं आसान करूं जुमले को, बहुत सी मरतबा हम अजान भी कहते हैं, इकामत भी कहते हैं, और लफ्ज अल्लाह से अकबर तक नहीं पहुंच पाते। एक ज़माना था जब हमारे मदारिस में बच्चों को सिफात सबूतिया सिफात सलबिया पढ़ाए जाते थे, और इसीलिए 10 बाब लिखे फ़िक़ह के, और एक लिखा उसूल फ़िक़ह का नहीं बल्कि इल्म कलाम का बाप, इसे 11वें बाप के नाम से याद किया गया, और सिर्फ अकायद के बारे में। आप फरमाती हैं सबको गवाह बनाकर हम कहते हैं खुदाया तू हमारा माबूद है, और तेरे अलावा पाइने अर्श से लेकर सातवीं जमीन की तह तक जितने माबूद जिसने बनाए हो सब बातिल हैं। एक तेरी जात करीम के मां सिवा कि तेरी जात साहिब इज्जत व करामत है, और इसका जलाल लोगों की तौसीफ से बुलंद तर है। इसके माना यूं कर लीजिए कि अल्लाह अकबर का तर्जुमा अल्लाह अकबर मिन अन यहमद, अल्लाह बड़ा किससे है, उन अल्फाजों से बड़ा कि जो उसकी तारीफ में बयान किए जाते हैं, बल्कि इसकी अजमत तक दिलों को भी रास्ता नहीं मिल सकता है। ये खुदा की, आप मौलाए मुत्तकियान में खुतबा पढ़ लीजिए, नहजुल बलागा में पहला खुतबा, और ये अल्फाज शहजादी कौनैन जनाब सज्जदा सलामुल्लाह अलैह इसलिए कि मार्फत शहजादी कौनैन की मार्फत मौलाए मुत्तकियान की मार्फत तकाबुल नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो मयार मार्फत मौलाए मुत्तकियान का है वही मयार मार्फत सय्यदा कौनैन का, वरना अगर जरा सा भी फर्क होता, एक तबके का फर्क होता, एक तबके का फर्क होता, एक हिंसे का फर्क होता, तो ये कुफ ना होते। बल्कि अल्फाज इससे बुलंद कर लीजिए, खुद मौला के बारे में अल्लाह के रसूल का फरमान कि अगर अली ना होते तो आदम भी तो आबिद हैं, नूह भी तो हैं, इब्राहिम भी तो हैं, तो आदम से खातम तक आखिरी पैगंबर तक आप तो बाबा हैं, कोई न था जो फातिमा का कुफ करार दिया जाता। अल्लाह अकबर। यह समझ लीजिए कि मौलाए मुत्तकियान के घर में शहजादी कौनैन के बाद तो और खवातीन भी आपकी हरम में आई हैं, तो सैयदा का मौलाए मुत्तकियान की बीवी होना कमाल नहीं है, बल्कि हम पल्ला होना कमाल है। मरजल बहरैन यल्तकियान, ये दो समंदर हैं जो आपस में इल्तिका कर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफ ना होता। अल्फाज ये नहीं है कि अगर सैयदा ना होती तो कोई अली के काबिल ना होता, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अगर अली ना होते। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए अजमत शहजादी कौनैन पर। फरमाती हैं ए वो ज़ात जिसकी मदह का फख्र तमाम मदह करने वालों से मा फौक है, कोई किसी की तारीफ करके कितना फख्र करेगा, जो खुदा की तारीफ करने वालों को फख्र हासिल है, और इसके मकारिम और आसार तमाम तौसीफ करने वालों की तौसीफ से बड़े हैं, उसकी अजीम शान, उसकी अजीम शान तमाम मुतकल्लिमीन के बयानात से बाहर है। वही अल्फाज जो मौला के खुतबे के अल्फाज उसी अंदाज से ये मार्फत के जुमला थे। फिर दुआ जब तिलावत कीजिएगा तो इस जुमले को तीन मरतबा पढ़ना था, आखिरी वाले जुमले को ए वो जात से लेकर ये जुमला जो पढ़ा हमने, इसके बाद शहजादी ने जुमले अदा किए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वहदहुला शरीक है, सारा मुल्क और सारी हम उसी के लिए है, वही हयात और मौत देने वाला जिंदा और पाइंदा है, इसके लिए मौत नहीं है, सारा खैर उसी के हाथ में है। क्या समझोगे खुदा को, क्या बताएंगे खुदा की शान को, ये जो अपने आप को नहीं समझ पाए अभी तक। खुदा को क्या समझा पाएंगे। खुदा को समझने के लिए कम से कम इतना तो हो कि अपने आप को समझ ले। ये तो हर हुकूमत में बिक जाते हैं। फिर फजल रहमान खुलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर रहमान का फजल ऐसा हो तो जैसा रहमान उनका वैसा फजल उसका। हम तो उस रहमान को मानते हैं अर रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान है जिसने कुरान की तालीम पहले दी, फिर इंसान को खल्क किया, फिर उसे बोलने वाला बना दिया। कोई था जो पैदा होते ही कुरान बोल रहा था? सारा खैर उसी के हाथ में है और वही हर शय पर कादिर, हर शय पर कादिर है। इस हिस्से को बीबी 11 मर्तबा पढ़ती थी। बहुत मुश्किल नहीं है, सूरह यासीन भी तो आप पढ़ते हैं सुबह में, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, सूरह यासीन के अलावा दुआए सबह की तिलावत करते, तो ये दुआ दुआए हरीक है। आज कम से कम इन 5 दिनों में अगर हम कोशिश करें, किताब का नाम सहीफ़तु ज़हरा से पढ़ रहा हो और ये किताब मार्केट में दस्तयाब, और अगर दस्तयाब ना मिल सके आपको तो आप सर्च कीजिए गूगल पर तो www.siptain.org पे मिल जाएगा आपको, वरना लिख के आप सर्च कीजिए दुआए हरीक, दुआए सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मिल जाएगा आपको। अब तो मुश्किल नहीं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो होता है ना कि वो कुछ ना कुछ इंसान के जहन में बात आती है, क्या करें, ये नहीं है तो अब किताब नहीं है। शैतान तो बहुत बहाने कराता है, तो सारे बहाने खत्म। सैयदा के नाम पे दुआ का आगाज है। फरमाती हैं इसके बाद पाक और पाकीज़ा है वो खुदा, यानी वो तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात तस्बीहात अरबा के नाम से, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि 4 कलिमात क्या हैं। अर्श के 4 कॉर्नर, बैतुल मामूर के भी 4 कॉर्नर, खाने काबा के भी 4 कॉर्नर, क्योंकि हकीकत ही 4 पर है। 4 कलिमात पर हकीकत है। उन्होंने पहला कलमा सुभान अल्लाह है, फिर वल्हम्दुलिल्लाह है, फिर वला इलाहा इल्लल्लाह, फिर चौथा वल्लाहु अकबर। अल्हम्द के तकाबुल में कोई सूरा नहीं आ सकता। अल्हम्द का वजन इतना है कि कोई सूरा उसके तकाबुल में नहीं आ सकता, लेकिन जो अल्हम्द की जगह भी ले सकती हो वो तस्बीहात अरबा है। तीसरी और चौथी रकत में ये फिक्ही मसल अखलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसके बाद माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल हलीम अल करीम अल अली अल अजीम। मैं गर्चे बोल चुका था मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा, मगर क्या करूं, अल्लाह के नाम आ गए। तर्जुमा क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह जो चाहता है, ला हौला वला कुव्वता, कोई हिम्मत कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात। अल हलीम साहिब हिल्म है, अल करीम साहिब करम है, अल अली बुलंदो बाला है। तुम जहाँ जहाँ से चाहो अल्लाह के नाम से अली निकाल दो, मगर ना निकाल सकोगे जहां जहां अल्लाह ने खुद अपना नाम अली रखा है। इतना भी क्या बोझ कि चौके उसका बंदा अली है और उसके बंदे के चाहने वाले जब उसको अली पुकारते हैं तुम्हें क्यों बुरा लगता है? Allah العلی العظیم، الرحمن الرحیم، یہ شہزادی کا انتخاب ہے الفاظ میں، الملک الحق المبین، بادشاہ بھی حق بھی اور کھلا ہوا بھی، عددہ اتنی مقدار میں اس کی تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر اتنی مقدار میں، عددہ خلق اللہ ہے جتنی اس نے اپنی مخلوقات بنائی، تسبیح گننے کا شارٹ طریقہ، اتنی مقدار میں، عددہ اتنی مقدار میں جتنی اس نے مخلوقات بنائی، وزنت عرش ہی اور اتنی مقدار میں جتنا عرش کا وزن ہے، کیا مطلب کہ مقدار اتنی ہو کہ جتنی مخلوقات ہیں اور وزن اتنا ہو جتنا عرش کا ہے، دو طریقے ہیں نا، یا گننے والا یا تولنے، سلوات پڑے محمد والے، بس میں ختم کر رہا ہوں، مجھے پیغامات تو مل گئے اور یہ چونکہ آخری ہے، چند جملے مکمل ہو جائیں، کل کی بات کل ہوگی انشاءاللہ. تو ایک ہے گننا، ایک ہے تولنا، گنتی میں کتنا ہو، جتنی مخلوقات اس نے بنائی ہے، مخلوقات سمجھنا خالی ایک بات کافی ہے، سر کے بال گنیں مخلوق ہے یا نہیں، بدن کے مسام گنیں، کبھی اپنے جسم کے سیل گنیں مخلوق ہے یا نہیں خدا کی، اس جتنی اس کی مخلوق ہے ان کی تعداد کے برابر تسبیح ہو، تحلیل ہو، تحمید و تکبیر، اور وزن اتنا ہو، ہلکی نہ ہو کہ گنتی ہو جائے، وزن نہ ہو، اتنی وزنی ہو کہ جتنا عرش کا وزن ہے اتنا اس کا وزن ہو جائے. اچھا ایک ہے گنتی، ایک ہے وزن، ہو سکتا ہے وزن زیادہ ہو مگر جسامت چھوٹی چھوٹی ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بہت بہت وزنی ہے ہے مگر اتنا سا، کہ پھر جسامت کتنی ہو، کہ مل او سماوات ہی ورز ہی، اتنی جسامت ہو کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے درمیان میں جتنی جگہ سب بھر جائے. اب آپ معرفت کے سمندر میں ڈوبتے جائیے کہ شہزادی کونین نے خدا کی تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، تکبیر کو کیسے تولا ہے. وہ عدد ما جرا بہی قلم ہو، اور اتنی تعداد میں ہو کہ جہاں تک تیرا قلم چلے، جہاں تک قلم قدرت چلے، اتنی تعداد میں یہ تمام تر تسبیحات تیری بارگاہ میں تیرے لیے ہیں. وہ احسا ہو کتاب ہو، اور جسے تیری کتاب شمار کر سکے، کرچے تفصیل میں جائیے تو یہ ایک جملہ ایک اشرے کے برابر ہے. قلم کیا ہے اور کتاب کیا، سلوات پڑھے محمد عالم کیا کہ اور آخری جملہ اس پیراگراف کا، یہ سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، بہت تعداد میں ہو، ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں، بہت تسبیح پڑھ لیں، وزن بہت زیادہ ہو جائے، جسامت بہت بڑی ہو جائے، لیکن خدا کو پسند نہ ہو، کسی کام کی نہیں. آخر فرمایا وہ رضا نفس سے ہی، اور جو خدا کو راضی کر رہی ہو وہ تسبیح تیرے، سلوات پڑھے محمد والے محمد. باقی بات نکل. اور اب یقیناً مشکل ترین منزل ہے کہ شہزادی کونین کا تذکرہ فضائل میں بھی، آپ کی معرفت کے کلمات میں بھی، اور آپ کے مصائب کے جملات میں بھی. صرف دو جملے کہہ کر رفتہ مصائب مکمل کر دوں گا، کلیجہ پھٹ جائے اگر سیدہ کے مصائب پورے پڑھ دیے جائیں. آج دل چاہتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں شہزادی کے مصائب پڑھ دوں. مکہ المکرمہ میں شہزادی کے قرآن مصائب کیا ہے، جتنے بیٹھے ہوئے جن کی ماں حیات ہے، खुदा माँ का साया औलाद पर कायम रखे, और जिनकी माओं का इंतकाल हो चुका है खुदा उन माओं को हुसैन की माँ के सदक़े बुलंद मकाम दे दे। जब किसी की माँ दुनिया से रुखसत होती है तो औलाद पे क़यामत हो जाती है। अच्छा आप समझ सकते हैं ना कि अगर ऐसा हो कि बहन भाई दो चार हों तो आपस में गम फिर बांट लिया जाता है, बहन भाई से मिलकर, भाई बहन से मिलकर रो लेते हैं। हाय सैयदा, जब खतीजा का जनाजा उठा फातिमा बिल्कुल अकेली है। सिन 5 साल का है, सिन 5 साल का है। अल्लाह अकबर, अपनी माँ के जनाजे को सैयदा ने अपनी आंखों से देखा। खुदा किसी कमसिन बच्ची को माँ का जनाजा न दिखाए। भाई नहीं है, फातिमा के भाई कोई नहीं है। हाय घर में कोई नहीं, बाबा है या माँ थी, माँ रुखसत हो गई, बाबा ऐसा मजलूम है, लोग पत्थर मारते हैं, लोग सरे मुबारक पर कचरा लाके डाल देते हैं, कभी पाँव के नालैन खून से भर जाते हैं। हाय सैयदा, बाप की गुर्बत को देखा, माँ की जुदाई को देखा, अजीब वक्त मुसीबत था सैयदा के लिए। जब खतीजे ताहिरा का जनाजा तैयार हो रहा था, अरे बेटी किससे गम की बात कहेगी, माँ जा रही है, बेटी किससे मिलके बातें करेगी। अरे इतनी उंसियत थी माँ से कि शिकमे खतीजा ताहिरा में बेटी माँ से बातें करती थी। आज जिससे बातें किया करती थी वो माँ दुनिया से रुखसत हो रही थी। खतीजा ताहिरा ने जब रुखसत इंतकाल किया है, इंतकाल से पहले एक वसीयत फरमाई थी। वसीयत क्या थी, जुमला बर्दाश्त कर सकेंगे? कुछ वसीयतें ऐसी अल्लाह के रसूल के सामने बयान की थी, और कुछ वसीयतें ऐसी थी जो बाद में बयान की थी, जो रसूल के सामने बयान की। उनमें से एक जुमला ये था, अल्लाह के रसूल मैं आपकी खिदमत का हक अदा नहीं कर सकी, मुझसे कोताही हो गई, मुझसे दरगुजर कीजिएगा। रसूल रो रहे थे, खतीजा फरियाद को ना दिया, रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जा, मैं आपका हक ना अदा कर सकी। रोने वालों दूसरी वसीयत जो शहजादी कोने से फरमाई थी, बेटी बाबा के पास जाना और बाबा के पास जाकर कहना कि अम्मा को शर्म आती है सामने कहते हुए। अम्मा कहती हैं कि आप कोई अपना वो लिबास दे दीजिए कि जो अम्मा बतौर कफन कब्र में साथ ले जाए। वाह मोहम्मद, अरे कफन नहीं मांगा तो फातिमा के जरिए मांगा। अरे या रसूल अल्लाह, उस वसीयत का क्या होगा जो खतीजा ने रोते हुए रसूल खुदा से फरमाया था। ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे बड़ी फिक्र है अपनी बेटी के बारे में, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी कोई मेरी बेटी को अजियत ना पहुंचाए, ये कुरैश की औरतें मेरी बेटी पर जुल्म ना ढाए, अरे कोई मेरी बच्ची को तमाचा ना मारे। वाह मोहम्मद, बीवी खतीजा मदीने में न थी, आए वो कयामत आई जब सैयदा पर जलता दरवाजा गिराया गया, सैयदा के चेहरे मुकद्दस पर तमाचों की जरूरत है। आए खतीजा,
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار کربلا میں یتیم حسین کا واسطہ، اسے تماچے مارے گئے، مدینہ میں رسول کے یتیمہ کا واسطہ،
اس پر یہ ظلم ڈھایا گیا. پروردگار خدیجہ طاہرہ کو پرسہ پیش کرتے ہوئے آج خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ شہزادی آپ کو آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام ماتم دار متمنی ہیں کہ کچھ قبول ہو کہ نہ ہو ہمیں نہیں معلوم, ہمارے پاس کوئی معرفت نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, کم از کم یہ جملہ قبول ہو جائے کہ جس نے سیدہ کو اذیت جس طرح پہنچائی ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اے خدایا ہمارے اس جملے کو قبول و مقبول فرما. پارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے وہ دن دکھا دے, وہ دن کب نصیب ہوگا جب جناب سیدہ کی مجلس بی بی کے روزے پر برپا ہو. پروردگار روزہ سیدہ فاطمہ زہرا کی تعمیر کے اسباب فراہم کرنا. پروردگار مکہ المکرمہ میں خدیجہ طاہرہ کا روزہ تعمیر ہو جائے کہ ماں کے روزے پر بیٹی کا ماتم کیا جا سکے. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا تمام نظام ظلم کو تباہ و برباد فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.